गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक परम भागवतीय पुण्य श्लोक परमात्मनीय श्री 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 प्रेमपुरी जी महाराज को प्रणाम। पूज्य श्री चरण स्वामी अखंडानंद जी महाराज को प्रणाम। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण परमात्मा को प्रणाम और आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। कृष्ण की पूरी चेष्टा ही एकमात्र अर्जुन को ज्ञान देने की है। ज्ञान का हेतु यही है कि इसको एक बोध हो जाए कि मैं क्षत्रिय हूं, लड़ना युद्ध करना मेरा धर्म है। और युद्ध भी जो है वह युद्ध जो है वह धर्म का युद्ध है, वह अधर्म का युद्ध नहीं है। वह युद्ध युद्ध नहीं है, युद्ध हिंसा नहीं है, युद्ध उसका कर्तव्य है। कर्तव्य से च्युत होना न दैन्यम न पलायनम, दीनता दिखाना और पलायन हो जाना दोनों ही उचित नहीं है। अतः कृष्ण चारों ओर से प्रयत्न करते हैं कि अर्जुन समझे, अर्जुन को बोध प्राप्त हो। अर्जुन को कहा यश क्या होता है, अपयश क्या होता है, तुम्हारे भला सोचने वाले तुम्हारे मित्र कोई उदासीन मध्यस्थ है, तुम्हारे साथ में शत्रु है, साधु है पापे, इन तमाम के प्रति सम बुद्धि करो। धन मेरे पास हो न हो ये मेरा अंगत विषय है, यश और अपयश भी मेरा निजी जीवन का विषय है। साधु का सम्मान करूं कि पापी का साथ में दुर्व्यवहार करूं ये भी मेरे निजी जीवन का विषय है। किंतु जहां तक शत्रु और मित्र का प्रश्न है वो मेरा निजी जीवन का नहीं है, मेरा पारिवारिक है, मेरा सामाजिक प्रश्न है। क्या हम शत्रु को मित्र कह सकते हैं, क्या मित्र को हम शत्रु कह सकते हैं? कृष्ण अर्जुन को एक ऐसी ऊंची स्थिति पर उठा देना चाहते हैं जिसको कहते हैं यत गत्वा न निवर्तन्ते, वहां से वो वापस नहीं आए, उस स्थिति में रह करके वो युद्ध करे, वो अपने धर्म को जाने, अपने कर्तव्य को जाने। और ये धर्म और कर्तव्य क्या है? कहते तेरे जीवन में कृष्ण ने पूरी कोशिश की, स्मगम कैल्यम क्या बोला, कैल्यम मा स्मगम पार्थका, एक उसको नपुंसक भी कह चुके कृष्ण, मूढ़ भी कह चुके कृष्ण। अब ये अर्जुन है उसको कोई नपुंसक कहे, अर्जुन को कोई मूड कहे, क्षत्रिय है खड़ा हो जाएगा तलवार लेकर के, क्षत्रिय है तीर कमान गांडीव लेकर के चलाने को तैयार हो जाएगा। कोई भरोसा नहीं है अर्जुन का, क्योंकि वह क्षत्रिय है, अपने ओजस तेजस प्राज्ञ से परिपूर्ण है, उसमें उसके रग रग में रोम रोम में कतरे कतरे में क्षत्रियता और युद्ध का एक बहुत बड़ा जोश भरा हुआ है। किंतु अर्जुन को कृष्ण प्यार देना चाहते, कृष्ण अपना प्रेम देना चाहते, वात्सल्य देना चाहते, बोध से प्यार से समझाते। देखो ये जहां तक प्यार का प्रश्न है, जगत में कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं है जिनको बोध का प्यार का नहीं होना चाहिए। सबको प्यार चाहिए, सबको प्रेम चाहिए। कोई बड़ा बुजुर्ग है तो बच्चे को प्यार करता है, पिता पुत्र को प्यार करता है, माता पुत्र को प्यार करती है। ध्यान दे, ये दीवार है ना, उससे आप प्यार करेंगे तो दीवार कदाचित जवाब नहीं दे सकती, दीवार पत्थर की बनी है। किंतु नीचे जहां सिक्योरिटी खड़ी रहती है, वहां छोटी छोटी बिल्लियां हैं, वो आती हैं जाती हैं, उसको कहो वो खड़ी हो जाती है, पूंछ खड़ी करके आपके पास में आती है, आपके चरण को रगड़ करके जाती है। वो अनजान है किंतु उसने एक आवाज सुनी, कोई मुझे प्यार से बुला रहा है। वो जानती नहीं कि मैं तो बंबई की हूं, ये महाराज है वो तो अहमदाबाद से आया है, हमारा इनका क्या संबंध है, ना हमने इनको देखा ना इन्होंने मुझे देखा है, हम पहली बार एक दूसरे को देख रहे हैं, किंतु प्यार से बुला रहा है। ये जो प्यार है बहुत आवश्यक है। किंतु माता पुत्र को प्यार करे और पुत्र उसको एहसास न करे, जवाब ना दे, तो माता दुखी हो जाएगी। पिता पुत्र को प्यार करे और पुत्र उसका उत्तर ना दे, पिता के हृदय में एक कलाई हो जाएगी, ये पुत्र कैसा है। क्योंकि पत्थर को प्यार करने से पत्थर है प्रत्युत नहीं कर सकता, वो पत्थर है जड़ है, हम तो चेतन है, क्या कहा अवच्छिन्न चैतन्य है, उस चैतन्य को जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, न जागृत में न स्वप्न में न सुसुप्ति में। अब क्या हो गया है, जब लोगों को प्यार मिलना बंद हो गया है तो लोगों ने कुत्तों को पालना चालू कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो तो कुत्ता तो द्वार पर खड़ा ही रहता है, आप आओ तो देखने के साथ में बोलो ना बोलो पूंछ हिलाना चालू कर देता है। हमको संतोष होता है, कम से कम घर में कोई तो मुझे पूंछ हिला रहा है। पहले तो पत्नियां हिलाती थी, बच्चे भी हिला देते थे, बड़े बुजुर्ग कोई भी हिला देते थे, किंतु वो नहीं हिलाते। वजह क्या है? क्योंकि हम उनको पता हो गया इसमें छल है। मछली को देखा है आपने जो कांटे को सिर पटका देती है, उस कांटे के ऊपर में आटे की गोलियां लगा दी जाती है, आटे की गोलियां लगा दी जाती हैं और वो उस कांटे को फेंका जाए। मछली है वो प्यार समझ के आती है किंतु धोखा खाती है कि जानती है मैं फंसी हूं, जीवन में धोखा बढ़ गया है प्यार के नाम पर। अर्जुन भी धोखा नहीं खाना चाहता है। अर्जुन ने बहुत दुनिया देखी है, नहीं देखा क्या? सब कुछ देखा। इंद्र लोक तक गया, इंद्र को प्रसन्न किया उसने, उसने शिव को प्रसन्न किया है। क्यों? कि आयुध लेने के लिए इंद्र को प्रसन्न किया है, आयुध लेने के लिए। वो एक वर्ष तक ब्रह्मला बन गया अपने धर्म के कारण। स्वर्ग की नर्तकी ने कहा मैं आपके जैसा पुत्र चाहती हूं, तो उन्होंने कह दिया फिर मैं ही तो आपका पुत्र हूं मां। तो बड़ा कड़क लग गया उस अप्सरा को, तो इतना मर्द पुरुष होते हुए मुझे मां कह रहा है, तो अपने आलिंगन में ले लेता है, जा तू नपुंसक हो जा। तो नपुंसक होना उसे मंजूर था, किंतु पर स्त्री को जिसमें उसकी रुचि नहीं है, जो प्यार की कोई भावना नहीं है, जिसमें अपना कर्तव्य अच्युत होता है, वहां वह उस दिशा में आगे कदम नहीं रखना चाहता है। मैं नपुंसक बन जाऊंगा किंतु पर स्त्री के सामने जहां मेरी रुचि नहीं है, जहां योग्यता नहीं है, जहां मेरे पिता की समानता का प्रश्न है, मेरे पिता के गौरव का प्रश्न है, उनके सामने कोई गलत आंख से देखना, गलत दिशा में सोचना, ये मेरा कर्तव्य नहीं। अर्जुन इतना धर्म प्रिय है, फिर भी आज अर्जुन है वो हतप्रभ हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि कहता है मैं कैसे कहूं कि ये मेरे मित्र है, मैं कैसे कहूं कि ये मेरे शत्रु नहीं है, इन्होंने सारा जीवन मुझे दुख ही दिया है। किंतु जहां हमने कल इस बात को शेष किया था वहां जानना चाहिए, हम तो अर्जुन नहीं है, हमारे सामने कोई कृष्ण नहीं है, फिर भी अपने जीवन में एक दिशा को समझ लेना, प्यार ही बांटते चले जाना, पॉजिटिव थिंकिंग। कृष्ण ने भगवत गीता में पूरी सकारात्मक चिंतनता को प्रकट किया है। वो सकारात्मक चिंतन क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग है। थिंक पॉजिटिव रेस विल फॉलो, सकारात्मक चिंतन। कृष्ण अब अर्जुन को कहते हैं तू अपने भाव से सोच, तुझे युद्ध क्यों करना है, करने की वजह क्या है, तेरी रुचि अरुचि का प्रश्न नहीं है, तेरी कर्तव्य की सभानता है, तेरी निष्ठा कहां है उसको देख। निष्ठा को छोड़ना नहीं, अपनी क्षत्रिय की निष्ठा, पांडव कुल गौरव की निष्ठा, द्रौपदी के मान सम्मान की निष्ठा, तेरे भाइयों के गौरव अरमान की निष्ठा, जिनको छल करके हराया गया है उन शत्रुओं की निष्ठा। वो शत्रु है तेरे, वो तुम्हारे हितेच्छु नहीं है। कृष्ण उन्हें जागृत करते समय बुद्धिर विशेषत है। ये बहुत जरूरी बात है। गीता में एक मध्य स्वर है सम्यक जीवन जीने का, युक्त आहार विहारश्च युक्त कर्मश्च शेषसो युक्त सपना व बोधस्य योग भवति दुःखः। बहुत खाए ना खाए, बहुत बोले ना बोले, बहुत सोए ना सोए, किसी भी तरफ में एक तरफ झुका वो नहीं है, वो तुलाधार वैश्य की बात है। समत्वम योग उच्चते, आपका योग है वो संतुलन है, छल छल छिन छिन नहीं जाना है, बहुत जरूरी बात है। कृष्ण कहते हैं कि मैं अगर चाहूं तो तुम्हें लड़ने के लिए जरूरत नहीं है, मेरी एक दृष्टि मात्र से मर जाते हैं, निमित्त मात्र। क्षत्रिय का ही मन बोल रहा है और मित्र और शत्रु की कीमत आंकता है। कृष्ण की सारी ही शिक्षा इतनी पॉजिटिव है, कृष्ण की सारी चेष्टा अर्जुन के भीतर एक योग उत्पन्न कर देने की है। वो कैसा योग है? वो चाहते हैं कि वह अपने हृदय के अंदर में अपने कर्तव्य की समानता से च्युत ना हो, अपनी जागृति से विमुख ना हो, अपने क्षत्रिय स्तर से परे ना हो। चिंता की एक बात है कि मान लीजिए कि किसी को भी अगर कहते हैं कि कल परसों कुछ बात हो रही थी तो मुझे किसी ने कहा भांग की पकौड़ी खाना चाहते, किसी ने यह भी पूछा था समझ जी भांग पियेंगे? ओ मां लक्ष्मी के बाहर मिलती है, हमने कहा नहीं पियेंगे। तो भांग पिला देने से क्या होता है, भांग की पकौड़ी खिलाने से क्या होता है? एक आदमी को जिस काम में लगा दिया जाए वो करता ही रहता है। वो छोड़ता नहीं है फिर कुछ क्या क्या बोलता है पता नहीं, आसमान से बातें करने लग जाता है। मैंने भांग पिए हुए किसी को देखा नहीं हूं, मगर भांग किए हुए को काम करने वाले को देखा हूं। हमारे आश्रम में हमको एक ड्यूटी लगी थी ऋषिकेश में कि 8 एकड़ जमीन में किसी ने गिफ्ट दिया था 24 एकड़, जिसमें 8 ही उपयोग का था, बाकी तो हाथी लोग आ जाते थे। तो वहां हमने कणक को बीजा, कणक कहते हैं गेहूं को, गेहूं लगा दिया। अब काटना है तो काट भी लिया, थ्रेसिंग करना है तो थ्रेसिंग करने के लिए मशीन तो लाएंगे, करेगा कौन, आदमी नहीं मिलते किराए में, और बादली बदल कभी भी आ गई तो सब गेहूं बर्बाद हो जाएगा। आश्रम में कोई बहुत सारे नए नए ब्रह्मचारी आए थे आंध्र से, तमिलनाडु से। हमने जनरल सेक्रेटरी से कहा इनको भेज दो मेरे साथ में। मैंने क्या करोगे, मैंने कहा थ्रेसिंग करेंगे। अरे दिस बॉय कांट डू ऑल सच थिंग, आप दे तो सही। उन्होंने दे दिए 10-12 लड़के। मैंने उनको हलवा खिलाया, पूड़ी खिलाए और भांग की पकौड़ी खिला दी। वो इतना प्यार से खड़ा कर दिया, वो यहां से गेहूं लेते मशीन में डाले, 8 घंटा तक खड़ा रहा, उसको पता नहीं वो क्या कर रहा है। अर्जुन को भी भांग पिलाई जा सकती थी, अर्जुन को भी ट्रांकलाइजेशन दिया जा सकता था, हाँ कि तुमको ट्रांकलाइजेशन दे दे, एक शराबी को जिसे नशा करा दिया जाता है, एक LSD कुछ दे दिया जाता है, तो उसके अंदर अर्जुन कर सकता था। कृष्ण ये नहीं चाहते, इज ऑल टेम्पररी, भांग का नशा है, शराब का नशा है, ये LSD का नशा टेम्पररी है। कृष्ण कहते तुम्हारे भीतर में एक परमानेंट नशा आ जाए, अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का, अपनी निष्ठा का, जो धर्म को कर्तव्य को निष्ठा से परे हो जाता है तो कैसे करके आगे जाएगा। योगी हो जा, तू लड़, किंतु लड़ने के लिए तू एक योद्धा हो करके नहीं, समत्व बुद्धि से लड़। आक्रोश में नहीं लड़ना है, क्रोध में आके नहीं लड़ना है, क्रोध में रहेगा तो हार जाएगा, क्योंकि उसका जीवन संतुल, मन में मानसिक विचार संतुलन नहीं है, जीवन की तमाम दिशाएं बिखर जाती है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह में क्या हो जाएगा, उचित अनुचित को भूल जाएगा वो, कहां मारना है कहां नहीं मारना है। क्रोध के अंदर में किया हुआ कार्य कोई उचित नहीं। कृष्ण नहीं चाहते कि वो क्रोध करे, कृष्ण चाहते हैं कि वो समत्व हो जाए तब जाके युद्ध करे और विष यश और विजय को प्राप्त करे। कृष्ण की तमाम चेष्टा उसको योगी कहे तू मरे चाहे बचे उसकी तू चिंता ना कर, लेकिन मृत्यु और जन्म के बीच में तुझे कोई फर्क नहीं होना चाहिए, तेरी जय हो विजय हो कि पराजय हो चिंता नहीं, किंतु दोनों में तुझे कोई भेद नहीं होना चाहिए। युद्ध के क्षण में भी योगी बनकर के रहे, बड़ा मुश्किल काम है ये, योगी बनकर के रहे, संतुलन जीवन में बनकर के रहे। हमारे जीवन में हम योगी अपने आप को क्या कहते हैं, हमने कल कहा न बाल बढ़ा लेने से कोई योगी होता है, जटा बढ़ा लेने से नहीं, उल्टा लटकने से तो कभी होता ही नहीं। योगी बोलने से अपने जीवन की तमाम गतिविधियों में संतुलन हो जाए। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर परिधान कर, उसके अतिरिक्त आप आत्मसंयम की उस बैली पर खड़े हो जाए। कृष्ण जैसे लोग ही प्रयास कर सकते हैं, कृष्ण के समान कोई गुरु न हुआ है न हो सकता है। अर्जुन को कितना कुछ पढ़ाया गया, कितने प्रश्नों के उत्तर दिए, फिर भी 7 अध्याय तक कृष्ण ने अपने आप को उल्टा करके रख दिया। फिर 8वें अध्याय में फिर बोलता है किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम, ये ब्रह्म कौन है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, हे पुरुषोत्तम अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, ये क्या क्या अर्जुन पूछ रहा है। किंतु कृष्ण को कभी भी खुजली नहीं हुई, चुप है, बहुत ज्यादा बोलता है नहीं, कहा शांति से उत्तर दे रहे, बड़ी शांति से। कृष्ण कहते हैं बहुत सुंदर बात, आइए 6वें अध्याय के 10वें श्लोक को पढ़ते हैं। योगी युंजीत सततम् योगी युंजीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः मानं रहसि एकाकी यत चित्तात्मा एकाकी यत निराशी अपरिग्रह राशि अपरिग्रह योगी युंजीत सततम् योगी युंजीत आत्मानं रहसि स्थितः मानं रहसि एकाकी यत चित्तात्मा एकाकी निराशीरपरिग्रह निराशी ही निराशी ही विसर्ग के बाद में सच स्वरूप उसका रह गया निराशी ही अपरिग्रह। तो कहते हैं कि इसलिए उचित है कि जिनका मन इंद्रिय सहित शरीर जीता हुआ है, देखिए ध्यान दें शरीर का मतलब क्या केवल मन इंद्रिय नहीं है, पांच कर्मेंद्रिय हैं, पांच ज्ञानेंद्रिय हैं, पंच प्राण हैं, पंच तन्मात्रा हैं, पंच महाभूत हैं और अंतकरण चतुष्टय जिसको मन बुद्धि चित्त अहंकार कहते हैं। तो ये तमाम 29 तत्व को मिला करके एक शरीर होता है, तभी शरीर नहीं है यदि उस शरीर में प्राण नहीं हो। तो कहते हैं कि इंद्रिय के सहित, जय हो, इंद्रिय के सहित मन जिसका जीता हुआ है, जितने का मन क्या होता है कि वो आपके वश में हो, इंद्रिय अपनी इच्छाओं से ना चले। हम जब योग पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि जो सुई के छेद में जो धागा डालते हो, वो धागा में एक फाइबर आउट रहेगा, वो धागा सुई के छेद में नहीं जाएगा, उसको एकाग्र करना पड़ता है। वो एकाग्र करने पर ही वो धागा जाएगा, और वो धागा एकाग्र होने में भी ढीला ढाला हो तो नहीं जाएगा, उसको सीधा वहीं लेके जाना पड़ता है। तो ऐसे ही अपने मन को जोशू थाई छे थशे करीशू है तो एवं है जावा दो ने ये नहीं है। फिर से योगी जी महाराज मेरे को फास्ट फुश्यू करवो नहीं है, मड़ा मोटा ना करे, एक मन में निश्चय करके श्रेष्ठ करके रखो, जो भी करना है योग के द्वारा। योग क्या बोले, योग कर्मसु कौशलम, कोई भी कार्य करना तो ढीला ढाला अच्छे से करो, बढ़िया से करो। क्या कहते हैं, इसलिए उचित है जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, शरीर है वो मन और इंद्रियों के साथ, मन तो जीता रहे इंद्रियां भी जीती रहे। क्या कहा, वासना रहित संग्रह रहित, इसमें वासना हो, अपने मन में कोई इच्छा नहीं, कोई भी नहीं इच्छा, जैमनी चलाओ तेमनी चले, हमी जंत्र तुम्हें जंत्री, रामकृष्ण परमहंस देव को रोज सवेरे याद कर लो, मीराबाई को याद करो, जहां बैठा वो तित ही बैठो, जो देवे सोई गाओ। ए कोकिला झवेरी माता जी, मेरे को तो वो कोकिला झवेरी नाम याद रहता ही नहीं है, मेरे को कोई एक और नया नाम याद रहता है, किशोरी अमोनकर, तो मैं समझा किशोरी अमोनकर ये माता जी है। तो ये किशोरी अमोनकर माता जी ने कल हम लोग बैठ के संगीत कुछ कर रहे थे, उनके राग कुछ अलग हैं, मेरे को वो राग अपने ही जचते हैं। तो मैंने कहा आज कोई चिंता नहीं, आप बोलने के साथ में मैंने बोल दूंगा, चिंता मत करो। बोले कमाल है आप। मैंने कहा देखो कोरी पार्टी छे, जिस स्लेट में कुछ भी नहीं पेंट किया है उसमें कुछ भी लिख लो, जो संगीत गाने वाले हैं उनको मुश्किल होता है, जो संगीत के बड़े पक्के पंडित होते हैं वो अपने ही सुर से गा सकते हैं, अपने ही ताल से गा सकते हैं, अपना ही हारमोनियम वाला चाहिए, अपना ही तबले वाला चाहिए, उनको पूछो उनको कि भाई गाओ ना, पर मारो हारमोनियम वालों क्या चाहिए, थोड़ा मुश्किल बात है, हमको तो कोई भी रहे ना रहे तब भी सीताराम, क्यों फकड़े, स्कूल गया ही नहीं, इसलिए ह्रस्व दीर्घ का चिंता नहीं। तो मतलब क्या है, अपने आप को इतना निर्मल कर लो, जैसे कच्ची मिट्टी, कच्ची मिट्टी को कोई भी आकार दे लो, चाहे घड़ा बनाओ, चाहे तवा बनाओ, चाहे सुराही बनाओ, एकदम नरम कर लो। ये कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू ऐसा हो जा, हाँ तू नरम भी नहीं है कड़क भी नहीं है बीच में लटक रहा है, ये दैट इज नो गुड, इनडिसिशनशिप इज नो गुड। वासना रहित, अपने में कोई इच्छा नहीं, आकांक्षा नहीं, तृष्णा नहीं, संग्रह रहित, ये चाहिए वो चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए भाई, कुछ भी नहीं चाहिए, एकांत स्थान में स्थित है, एकांत एक में जिसका अंत होता है, कौन सा एक है, ब्रह्म, ब्रह्म को छोड़ के कुछ भी नहीं चाहिए, ब्रह्म से नीचे सोचना ही नहीं, सोचना कहां है, हिमालय के ऊपर एवरेस्ट के ऊपर तक सोचना, तो आपकी ताकत गिरनार चढ़ने की भी नहीं है, परवाह नहीं, क्योंकि तुम्हारी सोच है बहुत ऊंची चाहिए। कल शाम को एक बिटिया को उनकी माता लेके आई पूना से, समझिए हमारी बिटिया का गुरुवार को इंटरव्यू है, थोड़ा आशीर्वाद कीजिए। मैंने कहा बेटे तू क्या बड़ी है, बोले मार्केटिंग मैनेजमेंट में मैंने लंदन से पढ़ाई की है। चलो अच्छी बात है। हमने कहा बम्बई में जहां तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है तो ये जो इस कंपनी को तुम पसंद करती हो, नथिंग वेरी स्पेशल बिकॉज दे इन्वाइटेड मी सो आई एम गोइंग। ठीक है, अगर तुम्हें पसंद हो कि नहीं हो, जब इंटरव्यू कॉल में तुम जा रही हो तो तुम सिलेक्ट होना ही चाहिए। एक नहीं पांच इंटरव्यू दो, पांचों में सिलेक्ट होके आओ। तुम्हारी इच्छा है तो जाओ, इच्छा नहीं है तो मत जाओ, किंतु फेल तो कहीं नहीं होना। पास तो सब जगह होना, सिलेक्ट सब जगह होना, और पांच लोगों को सिलेक्ट करें उसमें सबसे ऊपर तुम्हारा नाम चाहिए। ये गौरव है। मार्केटिंग में हमारी रुचि हो तो नमो नारायण स्वामी जी महाराज आइए विराज। मार्केटिंग में हमारी रुचि हो नहीं हो, किंतु जो भी कुछ हम करेंगे हमारा श्रेष्ठ होना चाहिए। क्या कहा है, श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम, उचित से उचित, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। इसलिए उचित यह है कि मन और इंद्रिय जिनके शरीर जीता हुआ है। अभी ये जो श्लोक है वो हमारे भगवान भगवान नमो नारायण, ये जो श्लोक है वो एक दो एक, जैसे कि हमारे वायुयान जो होता है स्पुटनिक जाता है जो आसमान में चंद्रमा में गया कि मंगल की ओर जाता है, तो उसकी दो सुविधा होती है, दो दुविधा होती है। एक तो होती है कि पृथ्वी है उसके ये जो खिंचाव है गुरुत्वाकर्षण, उसमें से उसको जाना है ऊपर, पृथ्वी नीचे खींचती है, और पृथ्वी नीचे खींचती एक मौका ऐसा आता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण पूरा हो जाता है और फिर वो चंद्र या मंगल का गुरुत्वाकर्षण चालू होता है। दोनों का जो जोड़ है उस जोड़ को जो भेदन करना है वो एक बड़ी ही विकट परिस्थिति होती है। उसमें से पार हो गया, बस बेड़ा पार। तो अब तक जो कृष्ण ने कहा है आत्मसंयम के बारे में, अनाशित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति, ये सब तमाम कहते 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 अब ये जो दसवां मंत्र है उसके बाद में ग्यारहवां से पूरी स्थिति परिस्थिति पलट जाएगी। अब तक कहा ये कर ये कर ये कर ये करना चाहिए करना चाहिए, अब कहा इसके लिए ये उपाय है। ओ, ओ, ओ उपाय का जो प्रकरण है उनके पहले एक सी स्थिति कहा कि बस तुम अब तक जो मैंने कहा उसका सार यही है, तुम इंद्रिय को निग्रह करो, तुम मन को निग्रह करो, ध्यान दे। शरीर है वो अगर शरीर स्थिर रहेगा तो आपके भीतर का प्राण है वो स्थिर होगा। अगर प्राण स्थिर होगा तो प्राण से इंद्रियां स्थिर होंगी, इंद्रिय स्थिर होने पर आपका मन स्थिर होगा, मन की स्थिरता के बाद बुद्धि स्थिर होगी, फिर बुद्धि के बाद में कहा यह बुद्धि परसस्तु सह, बुद्धि अगर स्थिर हो गई तो उसके बाद में परम तत्व में प्रवेश करने के लिए सुविधा होती है। किंतु ये श्रृंखला है, इसमें आप जंप नहीं कर सकते ना। जिसने एक क्लास में नहीं गया, दो क्लास में नहीं गया, वो दस क्लास में पीएचडी में नहीं जा सकता है, वो सीढ़ियां हैं उसके मुताबिक ही जाना पड़ेगा। इसलिए क्या कहा, व्यक्तिगत जीवन का अनुशासन, सामाजिक जीवन के अनुशासन, शारीरिक अनुशासन, प्राण का अनुशासन, ये बहिरंग योग है। और उसके बाद में अंतरंग योग जो है, अंतरंग योग में यम नियम आसन प्राणायाम के बाद में कहा प्रत्याहार, ये जो दसवां जो मंत्र है वो प्रत्याहार को कहता है। प्रत्याहार माने क्या है, अपने आप को कुर्मोंगानिव सर्वसह, जैसा कि हमारे सांख्य में भगवान ने कहा, जैसे कि कछुआ अपनी इंद्रियों को संकोचन करता है, कैसे करना है उसका उचित समय में उपयोग करना, नहीं तो उसको अपने आप में संकोचन कर लेना। तो इंद्रियों के ऊपर देखने के लिए ना नहीं कहा है, आंख बंद करके नहीं रहना है, कान से सुनने का बंद नहीं करना है, मुंह से बोलना भी नहीं बंद करना है, किंतु योग्य अयोग्य श्रेयश्च प्रेयश्च तौ संपरिक्त, योग्य और अयोग्य दोनों के भेद को जानना चाहिए, उचित अनुचित के भेद को जानना चाहिए, श्रेय और प्रिय के भेद को जानना चाहिए। श्रेय मने जिसमें हमारा कल्याण है, प्रिय जो मुझे आनंद देता है। प्रिय मने आनंद देता है, तो आनंद जो देता है वह इंद्रिय जन्य आनंद है। इंद्रिय जन्य आनंद शरीर को आनंद दे सकता है, आपकी इंद्रियों को आनंद दे सकता है, मन को आनंदित पुलकित कर सकता है, किंतु वो आपके कल्याण के लिए नहीं है। यही संस्पर्श जहा भोगा दुख यो न एवते आद्यंत वंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। तो जो हमको इंद्रिय जन्य आनंद है वो टेम्पररी सुख की भ्रांति पैदा करता है कि हमको सुख की अनुभूति, किंतु वस्तुतः वो सुख नहीं देता है। वो जैसे कि आपसे कहा कि सुख आपके दरवाजे को टोलता है, दरवाजा खोलो तो सुख अंदर आएगा, बंद करने के पहले दुख तो अंदर आ ही जाएगा, क्योंकि आप जब सुख को स्वीकार करते हो दुख उसके साथ साथ में एक रुपए की दो बाजू हैं। तो ऐसे ही सुख के साथ में दुख है। अगर प्रातः काल में सूर्य उदय हुआ तो वो सूर्य अस्त होने ही वाला है, समुद्र में ज्वार हुआ तो भाटा आने ही वाला है, संगीत में आरोह है तो अवरोह होता ही है, अगर पतझड़ आई तो वसंत भी होगी, वसंत हुई तो पतझड़ भी आएगी। ये जीवन के जन्म है तो मृत्यु अवश्य है। ये जो द्वंद है इसको आप प्रतिकार नहीं कर सकते, ये प्रकृति है इसको विच्छिन्न नहीं कर सकते। ऐसी अवस्था में हमें क्या करना है, कहते हैं कि संग्रह रहित और वासना रहित। भगवान भाष्यकार ने जो हमारा साधना पंचम के उसके अंदर भी यही स्पष्ट करके बोल दिया, वेदो नित्यमदीयताम तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम तेने सस्य विधीयताम अपचिति काम्य मतिस्तज्यताम। कामनाओं की बुद्धि छोड़ो, आप अध्ययन तो करते हो, अच्छी बात है, अध्ययन के मुताबिक अपने हर कर्म को श्रेष्ठ सुचारू रूप से करते हो ये भी उचित है। अपना प्रत्येक कर्म जो है वो ईश्वर की आराधना बन जाए ये भी उचित है, किंतु इनके पीछे कामना क्या है, इनके पीछे वासना क्या है, आपकी निष्ठा कितनी है। निष्ठा है वो पक्की होनी चाहिए किसी भी दृष्टि में, जीवन के हेतु जीवन के लक्ष्य। ये निष्ठा का बारे में आज होली में कुछ उटपटांग भी लोग बोलते हैं, गाला गाली भी करते हैं लोग, तो उनमें कोई आनंद होता है, विनोद होता है, तो निष्ठा की भी बात सुना देते कि निष्ठा कैसी होनी चाहिए। एक तो सज्जन रहे, वो प्रयाग में रहते थे, उनकी निष्ठा बड़ी पक्की थी, मैं दान करूंगा नहीं, वो कभी किसी को दान करना चाहते ही नहीं। तो निष्ठा है, लेट हेवन कम्स डाउन आई विल नॉट मेक चैरिटी, दान मेरा धर्म नहीं, मैं दान नहीं करूंगा, न दान कर सकता हूं। तो ऐसी उनकी पक्की निष्ठा। अब एक दिन बहुत बड़ा ग्रहण था, ग्रहण के दिन रात में 1 बजे ग्रहण छूट जाएगा, तो धर्मपत्नी ने कहा 1 बजे ग्रहण छूटता है तो 2-3 बजे जाके हम प्रयाग में ना लेंगे। पतिदेव ने बोला नहीं जाएंगे, घर में जो पानी आता है गंगे जमुने जैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिम कुरु, इसी को बोलकर के नहा ले मेरी प्यारी। वो ऐसे अंकुश मुद्रा भी कर लेना, वम वरुणम नम वम वरुण वरुणम सब कर लेना, किंतु इसी में ना, तुम्हें क्या तकलीफ होती है, इतना नजदीक तो होते। अरे भगवान तू समझती का है, नहीं वहां गए तो कोई फिर कोई पंडित आ जाएगा ऐसे हाथ करेगा, अब सवेरे सवेरे उसका मुंह क्या मैं काला करूं, मैं दान देने वाला नहीं हूं, वो मेरे को तकलीफ करेगा। मेरे भगवान मेरे प्यारे, रात 2 बजे कोई पंडित नहीं आता है। हाँ ये बात भी ठीक है, तो लोग बाग भी आने के पहले नहा लेंगे, हम 3 बजे वापस आ जाएंगे। चल तो कहती है तो चल जाते हैं। रात 2:45 वो गंगा जी में नहाए तो भगवान शिव इतने प्रसन्न हो गए, आहा हा ये ब्राह्मण दंपति है, सवेरे सवेरे ग्रहण काल जब पूरा हो गया तो इतने ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले स्नान किए, मेरा कर्तव्य होता है मैं जाकर के उनको वरदान दूं। अब जो वरदान देना है तो मुझे कुछ देगा तब तो वरदान दूंगा ना, तो वो ब्राह्मण का वेश बना के भोलेनाथ आ गए। वो जब नहा के आया कपड़ा बदली करता है, महाराज पुण्यकाल में ब्राह्मण को दान दीजिए। वो इतना दुखी हो गया, अपनी पत्नी को देखा, पत्नी चुप रही, मैंने तुझे कहा था ना कोई तो ब्राह्मण आएगा आएगा मांगेगा मांगेगा। देखो महाराज हमारा घर नजदीक है, हम यहां नहाने आए जल्दी जल्दी, पैसे वैसे नहीं लाए, आप जाइए कोई पैसा है। अरे घर नजदीक है तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं ना, उधर जा करके दे देना, चलो वहीं चलते हैं। तो क्या हो गया? अरे भाई नहीं देते, हमने मना कर दिया ना। अरे कोई चिंता नहीं, कुछ तो दे देना, कोई केला दे देना, कोई अमरूद दे देना, कोई सुपारी दे देना, कुछ नहीं है तो खाली एक तुलसी का पत्ता। मैंने मेरी निष्ठा है कुछ दान नहीं देने की, तुम क्यों खामोखा मेरा सिर खराब करते हो? अच्छा ठीक है, आप चलो तो सही, घर जाते जाते मेरी बुद्धि है कुछ चिंता करे और आपकी बुद्धि में परी, क्योंकि वो देखो सात सात कदम पुरुष स्त्री साथ चलते तो पति पत्नी हो जाते। मैं आपके घर तक चलूंगा तो हमारी मैत्री हो ही जाएगी। वो गया मगर नहीं दिया, उसने मना कर दिया, नहीं देंगे। वो बैठा रहा, पत्नी बोली मैं क्या करूं? बोले मेरा पति को ठंड लग गई तो मर गया है, बोल। वो बोले मैं क्या करूं, बहुत दुखी की बात है, बड़ी ठंड लगी तो मेरे पति मर गए। तो जो शिव भोलेनाथ आए थे बाबा ब्राह्मण बनके, बोले अब तुम तो अकेली हो माई, क्या करोगी? थोड़ा सूरज चढ़ने दो, अड़ोस पड़ोस के लोगों को मैं ही बुला के लाऊंगा, बांस भी लेके आऊंगा, रस्सी भी लेके आऊंगा, फिर जला करके फिर जाऊंगा। वो छोड़े नहीं, अब क्या करते, छोड़े नहीं उनको तो बड़ा मुश्किल हो गया। सचमुच भी वो तो बुला के लाया और वो ऐसा है, प्राण को इतना ऊपर ले लिया, लकड़ी के माफिक हो गया, देखा तो मुर्दा पड़ा है, उसको बांध दिए तब भी नहीं बोला, अब चिता लगा दिए तब भी नहीं बोला। अब भोलेनाथ को तकलीफ हो गई, खामोखा मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, जिंदे आदमी को मैंने अपनी जिद के कारण इसको जला दिया, तो अपने सिर से गंगा निकाल के उसमें छेड़े तो हड़स से उठा खड़ा हो गया। तो बाकी लोग तो भाग गए कि मुर्दा बैठ गया है। शिव बाबा बोले तो खड़े, अरे मेरे प्यारे तेरी निष्ठा दान नहीं देने की कमाल है, मैं प्रसन्न हूं, वरम रूही, वरदान मांगो, तुमको क्या चाहिए? बोले वरदान क्यों देते हो? अरे जब तुम कुछ दो तब तो वरदान देना चाहिए, ऐसा सोच के मैं कैलाश से आया था और तुम्हारी निष्ठा इतनी पक्की है तुम कुछ देना चाहते नहीं, अब मैं फिर भी प्रसन्न हूं, तुमको दान देता हूं। अच्छा सुनो, शिव जी को बोले अगर मैं मान लो कि कुछ दान देता तो आप बड़ा सुंदर वरदान देते थे ना, हाँ, तो मान लो कि मैंने आपको दे दिया हूं, वरदान दे और जाओ। देखो कैसी निष्ठा है, तो ये निष्ठा कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी जो निष्ठा है तुम्हारे कर्तव्य की, तुम्हारे धर्म की और तुम्हारे क्षत्रियत्व की। कृष्ण ने क्या वर्ण भी समझाया, कृष्ण ने वर्ण समझाया और कृष्ण ने हमको यह भी समझाया कि आपका जो चक्र है, तीसरे अध्याय में बता दिया कि आपका जो ब्रह्मचर्य है, आपका गृहस्थ धर्म है, वानप्रस्थ धर्म है, संन्यस्त धर्म है, तो आपका धर्म भी समझाया, तो आपका गृहस्थ धर्म भी है, युद्ध करने का धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है, अपने वर्ण में भी हो, तो ये अपनी इस निष्ठा को ना छोड़ो। ये कृष्ण कहते हैं योगी युंजीत सततम, ये सतत शब्द को जानना चाहिए, सतत कहते कंटिन्यूटी, ये सतत नहीं होने से गुजारा नहीं चलेगा। शिव जी के मंदिर में सिर में एक घड़ा रखते हैं, उसमें से पानी हमेशा गिरता है, हमारी साधना हमारी आराधना भी सतत चाहिए। अभी नवरात्रि आएगी तो लोग कहते हैं कि नवरात्रि में हम पुरुष चरण करते हैं, 24 लाख गायत्री मंत्र कर लेते हैं, तो चैत्र नवरात्र वसंत नवरात्रि में 24 लाख करना तो अच्छी बात है, फिर आसो नवरात्रि में करते हैं, बाकी दिन फिर बाकी दिन तो नहीं पड़ता है, तो ये गलत बात है। अरे आप रोज 3 माला जप करो, किंतु रोज करो ही करो, एक स्थान पर एक समय में बैठ करके जो साधना करो सो तो करो ही करो, उसमें कोई भी ये विच्छिन्न नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी दाया बाया, सततम, ये सतत शब्द है। कृष्ण परमात्मा ने गीता में अनेक बार एवं सतत युक्ता है, सतत बहुत बफिन किया है, तो हमारी जो साधना है उसमें सातत्य होना, और क्या कहा है, युंजीत आत्मानम, आत्मा के साथ में जोड़ना है, अनात्मा में नहीं है। आत्मा में जुड़ना मैंने क्या है, जब आत्मा में जुड़ जाएंगे फिर कामना नहीं रहेगी। आत्मसंस्थन मन कृत्वा न किंचित अपिचिंतयेत, जब मन आत्मा में जुड़ जाएगा फिर कोई इच्छा नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई वासना नहीं, बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसको विचार कल प्रातः काल करेंगे, अभी यहां वाणी को विराम देते हैं। परमात्मा सभी का मंगल करे, सभी का शुभ करे, सभी का कल्याण करे। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। और आज हाँ, आपके कागज में लिखा होगा आज होली है, क्योंकि कल पढ़ा था चतुर्दशी है, तो आज श्री श्री गौरांग महाप्रभु जी के जन्म का दूसरा दिन धुलेंडी कहते हैं रंग डालने का दिन और होली का रसिया है। और मैंने बोला कि रसिया आम का रसिया, तो मुझे किसी ने कहा रसिया तो आम नहीं होता है, रसिया ढोकला हो। चलो ठीक है, जो कुछ भी हो तो हम आज अभी रसिया थोड़ा गाएंगे, सबको पीछे जो बैठे तो आगे आगे आ जाएं तो खुशी हो जाएगी। और अभी जो है भगवान को आइए, प्रभु आप लोग भी आइए। अभी जो है वो सवेरे सवेरे कैसा होता, देखिए एक नियम है गाने के लिए, नियम यह है कि सवेरे सवेरे के माफिक गाना चाहिए, दोपहर को दोपहर के माफिक गाना चाहिए। ये ध्यान दें, प्रातःकाल रसिया होगा तो कितने लोग आएंगे, ऐसा आदरणीय सुश्री कोकिला जवेरी माता जी के संगीत समारोह में पूछा गया। लोगों ने कहा स्वामी जी शाम को रखिए, सवेरे तो होगा ही होगा, शाम को विशेष रूप से होगा और कुछ नृत्य वृत्य भी होगा। अभी आपसे प्रार्थना है कि ये थोड़ा लंबा नहीं है, छोटा ही है, घर नहीं चले जाना, जो लोग स्वाध्याय में बैठते हैं स्वाध्याय में बैठेंगे, ठीक 8:45 बजे स्वाध्याय जैसे होता है वैसे ही होगा। जो लोग स्वाध्याय में बैठते हैं उनसे प्रार्थना है कि कृपया आप छत में बिना प्रसाद लिए न जाएं, छत में प्रसाद है तो क्या है उन्हें बताता हूं, चुप रहता हूं, तो मिलेगा आपको। हमारे महाराज लोगों के यहां एक और कुछ होता है, अगर गुरुजी का चेला है आपको लेके महाराज बुला रहे हैं, क्या बात है कुछ प्रसाद मिलेगा, तो उसका मतलब दूसरा होता है कोई प्रसाद मिलेगा। कृष्ण परमात्मा पोड़े हुए हैं, ऐसी अवस्था है, रात पूरी हो गई है, ग्वाल बाल द्वार में खड़े हैं, काना काना पुकार रहे हैं, कहते हैं कि हे कृष्ण रात पूरी हो गई है, दिन चढ़ गया है, दिन मणि का उदय हुआ है, ग्वाल बाल द्वार पर खड़े हैं, अब नींद छोड़ो, गोप और गोपियों के हृदय में उमंग है, राधा के संग सब आए हैं, हे भुवन मोहन दर्शन दें, अब ये चापलूसी छोड़े, कृष्णा आओ यमुना के तट पर जाएं, कदम के छयन में जाएं, हे नंदलाल नंद भुवन में लेटे हो बार आओ, गोपी गोपियों से कुछ बात करो प्यार करो, आओ कृष्ण को जगाया जा रहा है होरी खेलन के लिए। बता साथे बोलो ओ वसुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु, हे देव हे दैत हे जगदेक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हाहाकदानु भवितासि पदं दृशो। जगाए जसोदा मैया नंद कुंवर जा जगाए जशोदा मैया जगाए जशोदा मैया नंद कुंवर जागो नंद कुंवर जागो जगाए जशोदा मैया नंद कुंवर जागो नंद कुंवर जागो प्रभु जो पागो नंद कुंवर जागो प्रभु जो चाहे तो मांगो जगाए जशोदा मैया जगाए जशोदा मैया नंद कुंवर जागो रात बीती भयो दीनामणि उदय भयो रात बीते दीन भयो दीनामणि उदय भयो बाल बाल धार करे बाल बाल धार करे नींद अब तो जागो जगाए जशोदा मैया जगाए जशोदा मैया नंद कुंवर जागो नंद कुंवर जागो प्रभु जो तुम्हारो जगाए जशोदा मैया नंद कुंवर गोपी करियो मंद गोप गोपी करियो मंद आए सब राधा संग गोप गोपी करियो मंद आए सब राधा संग पुवन हो जो पुवन बीजो छोड़ दियो चारो गाए जशोदा मैया जगाए जशोदा मैया नंद कुंवर जागो नंद कुंवर जागो प्रभु जो चाहे तो मांगो जगाए जशोदा मैया नंद कुंवर जागो जमू
తతూలీన కదంబ కిచయనమే ఆజ యమునాకే తతూలీన కదంబ కిచయనమే ఆజ నందలాల నందభువనమే నందలాల నందభువనమే ఓరే సఖీ కరత జగాయే యశోదా మయ్యా జగాయే యశోదా మయ్యా నందకువర జాగు చాయే ఆగు జగాయే యశోదా మయ్యా జగాయే యశోదా మయ్యా నందకువర జా
राग भैरव और ताल दादरा में निबद्ध इस स्तुति के बाद में अब राग बसंत तीन ताल में भगवान से कहा जा रहा है कि आओ प्रभु अब होली खेलन आओ श्याम श्यामा को भी जाएंगे न केवल हम ही किंतु वन की तमाम संपदाएं कदंब ये मालती ये जाए जुई केतकी गुलाब चंपक कुमकुम केशर चंदन अगर की धूप की सुगंध जमुना जी तमाम के हृदय में एक ही भाव है हमारे छलिया हमारे कन्हैया आए और हम संग होली खेलें निमंत्रण दिया जा रहा है कन्हैया आओ होली खेलन आओ
Run.
शरदु रंग भरि दरि श्याम श्याम तु विद्धा निखिलन आतु रंग भरि निज कारिला श्याम श्याम कु विद्धारु ओरि खेलन
पलासी और बाद में राग देश में एक ताल में निबद्ध काना आए हैं होरी खेल रहे हैं।
खेलो खेलो नंद लाला हम संग होरी रसीली त्रिज भुवन की होरी रसीली त्रिज भुवन की खेलो खेलो नंद लाला हम संग होरी रसीली प्रिय भुवन खींच खींच रंग छांगत सब पर खींच खींच रंग छांगत सब पर रंग रंग सखी रूप की आगर रंग रंग सखी रूप की आगर अदमानी नीरा धानक नागर खेलो खेलो नंदलाला हम संग होरी रसीली बन बन आये सके सुंदर ब्रज भुवन के नारी भई रसीले मुरली के धुन सुनत भई बावरी बन बन आर बन बन आर बन बन कूल कील में खेल कन्हैया कूल कील में खेल कन्हैया संग गैया गोप होतीन छैया संग गैया गोप होतीन छैया श्याम संग में राधे सलोनी श्याम संग राधे सलोनी सांवरी बन बन आर बन बन आर बन बन आई सखी सुंदरी।
आगे की जो रचना है वो राग कलावती में और ताल कहरवा है।
सब मिल आओ होरी मनाओ सब मिल आओ होरी मनाओ अबीर गुलाल सो रंग रंगाओ अबीर गुलाल सो रंग रंगाओ सब मिल आओ होरी मनाओ सब मिल आओ होरी मनाओ रंग रंगाओ प्यारे होरी मनाओ रंग रंगाओ प्यारे होरी मनाओ होरी मनाओ प्यारे सब मिल गाओ होरी मनाओ प्यारे सब मिल आओ सब मिल आओ होरी मना नाचो न चाहो थई थई नाचो नाचो न चाहो थई थई नाचो झांझ पखांझ मृदंग बजाओ झांझ पखांझ मृदंग बजाओ रंग रंगाओ प्यारे होरी मनाओ रंग रंगाओ प्यारे होरी मनाओ होरी मनाओ प्यारे सब मिल गाओ होरी मनाओ प्यारे सब मिल गाओ सब मिल आओ होली मनाओ सब मिल आओ होली मनाओ गाओ गजाओ गीत सुनाओ गाओ गजाओ गीत सुनाओ रसिया रस भर सरस सुनाओ रसिया रस भर सरस सुनाओ रंग रंगाओ प्यारे होली मनाओ रंग रंगाओ प्यारे होली मनाओ होली मनाओ प्यारे सब मिल गाओ मनाओ प्यारे सब मिल गाओ अभी लघु लाल सो रंग रंगाओ अभी लघु लाल सो रंग रंगा राधा माधव राधा माधव जय हो राधा माधव 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 जय 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 श्री राधे राधे जय 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 श्री राधे जय हो जय श्री राधे जय 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 श्री राधे 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 राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधा राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम